हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 11। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। कृष्णातदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैवमे विशतो मानसराज हंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्तु। आराध्यो भगवान् ब्रजीशतनाय, तत्थाम वृंदावनम् रम्याकाचिदुपासना व्रजवधु। वर्गीनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम ओमर्थोमा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापरा। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरि। श्रोतव्यकीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिच्छताभयम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 11 अत्यंत ही सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, एतन्ने विद्यमानानां इच्छतां मकुतो भयं योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्। एतन्निर्विद्यमानानां इच्छतां मकुतो भयं योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्। एतन्निर्विद्यमानानां इच्छतां मकुतो भयं योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्। शब्दार्थ, एतन एतन मतलब यह है, निर्विद्यमानानां यानी जो समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त है उनका। निर्विद्यमान मतलब किसी भी भौतिक इच्छा को उसने अपने हृदय में आने नहीं दिया है, वो निर्विद्यमानम होते हैं। इच्छताम यानी जो समस्त प्रकार के भौतिक भोगों के इच्छुक हैं उनका। अकुतो भयम, अकुतो भयम का मतलब है समस्त संदेहों तथा भय से मुक्त है। योगी नाम आत्मसंतुष्टों का। नृप हे राजन, निर्णीतम यानी निश्चित सत्य। हरे नामानुकीर्तनम, हरे यानी भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के नाम पवित्र नाम। अनुकीर्तनम, अनु का मतलब होता है किसी के पीछे, सदैव। कीर्तनम यानी कीर्तन। अनुवाद, हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है। जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मसंतुष्ट हैं। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे हम सब श्रील प्रभुपाद जी के इन शब्दों को समझने का और उन पर आचरण करने का पूरा पूरा प्रयास करना हमें चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि पिछले श्लोकों में मुकुंद के प्रति आसक्ति प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो नाना प्रकार के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतः ये लोग भौतिकतावादी होते हैं जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके बाद आध्यात्मवादी होते हैं जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इस तरह वे जीवन की भ्रामिक शैली से दूर रहते हैं। न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। उनसे भी ऊपर भगवत भक्त होते हैं जो ना तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और ना ही इससे छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त अपने खुद के लिए कोई कामना नहीं करता। यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करता है, और यदि भगवान ऐसा नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाओं यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख देते हैं। ना ही वे आत्मसंतुष्ट होते हैं क्योंकि वे केवल भगवान की ही संतुष्टि चाहते हैं। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप से परिचित रहता है होता है, फिर भगवान के गुणों से और तब उनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप को लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है और इस तरह उत्तरोत्तर आगे श्री रूपा जी बता रहे हैं कि इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर भगवान के गुणों से और तब उनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर इसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप गुण लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त करता है और इस तरह उत्तरोत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह विधि न केवल भक्तिमय सेवा की सफल संपन्नता के लिए संस्तुत की गई है अपितु उन लोगों के लिए भी संस्तुत की गई है जो भौतिक रूप से आसक्त हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित विधि है जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निश्चित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता न रह जाती है। यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभाग के जिज्ञासुओं के लिए संस्तुत है अपितु उन लोगों के लिए है भी है जिन्होंने कर्मी दार्शनिक या भगवत भक्त के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। श्री जीव गोस्वामी का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम का जप उच्च स्वर में और साथ ही पद्म पुराण की संस्तुति के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। मनुष्य भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से अपने को उभार सकता है। मनुष्य भगवान के पवित्र नाम की शरण लेकर अपने को भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराधों से छुड़ा सकता है, किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरणों में अपराध करता है तो वह अपने को बचा नहीं सकता। पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिसकी संख्या 10 बताई गई है। पहला अपराध उन महान भक्तों को कलंकित करना है जिन्होंने भगवान की महिमा का प्रचार किया है। दूसरा अपराध है भगवान के पवित्र नामों को संसारी ख्याति के रूप में देखना। भगवान समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अतएव वे विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से जाने जा सकते हैं, किंतु इससे भगवान की किसी तरह पूर्णता सिद्धि नहीं होती। भगवान के लिए प्रयुक्त कोई भी नाम शब्दावली अन्य किसी भी नाम जैसी पवित्र है, क्योंकि वे सभी भगवान के निमित्त हैं। ऐसे पवित्र नाम भगवान के ही समान शक्तिशाली होते हैं और सृष्टि के किसी भी भाग में भगवान के किसी एक स्थान पर किसी एक स्थानीय तौर पर परिचित नाम का कीर्तन करने तथा भगवान की महिमा के गायन करने में कोई रोक टोक नहीं है। सारे नाम कल्याणप्रद हैं और मनुष्य को चाहिए कि ऐसे नामों में भौतिक व्यापारिक वस्तु की तरह भेदभाव नहीं समझे। तीसरा अपराध है प्राधिकृत आचार्य या गुरु के आदेशों की उपेक्षा करना। चौथा अपराध शास्त्रों को या वैदिक ज्ञान को कलंकित करना। पांचवा अपराध भगवान के पवित्र नाम को अपनी संसारी गणना के अनुसार परिभाषित करना। भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है और मनुष्य को चाहिए। छठा अपराध है पवित्र नाम की मनमानी व्याख्या करना। ना तो भगवान काल्पनिक है, ना ही उनका पवित्र नाम काल्पनिक है, किंतु कुछ ऐसे अल्पज्ञ लोग हैं जो भगवान को पूजक की कल्पना मानते हैं और इस तरह उनके पवित्र नाम को काल्पनिक समझते हैं। ऐसे भगवान नाम के जप को पवित्र करने वाले नाम के जप में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सातवां अपराध है पवित्र भगवान नाम के बल पर जानबूझकर पाप करना। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल पवित्र भगवान नाम के जप से समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से छूटा जा सकता है। जो व्यक्ति इस दिव्य विधि का लाभ उठाता है और इस उम्मीद से पाप कर जाता है, कि भगवान के पवित्र नाम के जप से पापों के प्रभाव निरस्त होते जाएंगे, तो वह पवित्र नाम के चरणों में सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसा अपराधी शुद्धि की किसी भी संस्तुति विधि से अपने को शुद्ध नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भले ही भगवान के पवित्र नाम के जप के पूर्व कोई पापी हो, लेकिन भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण कर लेने पर और सुरक्षित बन जाने पर मनुष्य को चाहिए कि वह इस आशा से पाप करने से विलग रहे कि यह पवित्र नाम जब उसकी रक्षा करेगा। आठवां अपराध है भगवान के पवित्र नाम तथा उसकी जप विधि को किसी भौतिक शुभ कर्म के तुल्य मानना। भौतिक लाभ के लिए अनेक प्रकार के शुभ कर्म होते हैं, लेकिन पवित्र नाम तथा इसका जप केवल पवित्र शुभ सेवा नहीं है। निसंदेह पवित्र नाम पवित्र सेवा है, लेकिन इसका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पवित्र नाम तथा भगवान नाम एक ही सत्ता है। अतएव पवित्र नाम को मानवता की सेवा में नहीं घसीटना चाहिए। भाव यह है कि परमेश्वर परम भोक्ता है, वे ना तो किसी के सेवक हैं, ना ही किसी के आदेश पालक हैं। इसी प्रकार चूंकि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है, अतएव पवित्र नाम का उपयोग निजी सेवा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नवा अपराध है ऐसे लोगों को पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में उपदेश देना जो भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करना चाहते। यदि ऐसा आदेश अनिच्छुक श्रोतागण को दिया जाता है, तो इस कार्य को पवित्र नाम के चरणों पर अपराध माना जाता है। दसवां अपराध है पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में सुनने के बाद भी भगवान के पवित्र नाम के प्रति अरुचि प्रदर्शित करना। भगवान के पवित्र नाम के जप से जो प्रभाव अनुभव किया जाता है, वह है झूठे अहंकार की धारणा से जप करने वालों की मुक्ति। झूठा अहंकार अपने को विश्व का भोक्ता समझने तथा यह सोचने के कारण प्रकट होता है कि विश्व की सारी वस्तुएं उसी के उपयोग के लिए हैं। सारा भौतिकवादी जगत तथा मेरा के झूठे अहंकार के वशीभूत है, किंतु ऐसी भ्रांत धारणा से मुक्त होना ही पवित्र नाम के जप का असली प्रभाव होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। मूकं कुरुतु वाचालम् पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंदमाधवं
श्री चैतन्य ईश्वरम।
प्रथम स्कंद के अध्याय नंबर 19 के श्लोक नंबर 37 में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से जो प्रश्न किया था, अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, में आपसे पूछता हूँ कि पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। पुरुषस्येह यत्कार्यं, उसे क्या कार्य करना चाहिए, और स्पेशल जो म्रियमाणस्य, जो मरने वाले जीव हैं हम जैसे, जिनकी आज नहीं तो कल मृत्यु होने वाली है, वो अपने जीवन में क्या ऐसा करें कि उन्हें अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक सिद्धि प्राप्त हो सके। आप ये बताइए कि एक जीव को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यम्, यत् कर्तव्य निर्भ प्रभु, स्मर्तव्यम् भजनीयम् वा ब्रूहि अथवा विपर्यम्। उसे क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इंद्रियों के द्वारा क्या करना चाहिए, स्मरण किसका करना चाहिए, भजन किसका करना चाहिए, आप निश्चित रूप से हमें बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि क्या करना है, आपको भगवान के विषय में श्रवण करना। श्लोक नंबर 5 में सुखदेव गोस्वामी ने एकदम क्लियर बताया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभय। जो वास्तव में अभय चाहते हैं उन्हें भगवान श्री हरि के विषय में श्रवण करना चाहिए, उन्हीं का मुख के द्वारा कीर्तन करना चाहिए, हृदय में उन्हीं को स्मरण करना चाहिए। और ये कैसे आप कर सकते हो, उन्होंने बताया, कल हमने श्लोक में पढ़ा कि वही भागवतम महापुराण जो मेरे पिताजी से मैंने श्रवण किया था, वही भागवतम, तदहम ते भी धास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धदतामाशु स्यान्मुकुन्दे मति सति। मैं वही भागवतम पुराण आपको बताने वाला हूँ जिससे जीव की मति भगवान श्री मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान हैं, उनके चरणों में सती हो जाती है। मतलब अब और कुछ नहीं सुनना है आपको, कुछ भी करने की या कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप आनंदित हो जाइए, आनंद से बैठिए, एकाग्रता के साथ बैठ जाइए और बैठकर बस सुनिए। यही करना है आपको, जो मैं बोलने वाला हूँ वही श्रवण करना है, जो मैं कहने वाला हूँ उसी का स्मरण करना है, और जो मैं आपको बताऊंगा उसी का आपको जप करना है। बस वही बता, आपको कुछ करने की, मेहनत करने की, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर होगा वही समझो जीव का वास्तविक लक्ष्य है, वास्तविक कार्य यही है, यही जीवन का परम लाभ है, यही सुनना है, यही बोलना है, इसके अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। तो मानो वहाँ पर ना इतने सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, तो उनके मन में कुछ संशय हो कि इतनी सारी तो दूसरी विधियां भी शास्त्रों में बताई गई हैं, यज्ञ दान तपस्या इत्यादि, तो केवल श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रवण करने की इतनी महिमा क्यों। मतलब ये सुखदेव आज से पहले ऐसा कभी किसी ऋषि ने इतना निर्णायक सत्य, इतना 100% जो है ना श्योर होके, इतना निर्णायक मात्मिक ढंग से ये नहीं बताया कि जीव का वास्तविक लक्ष्य श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करना है। तो ऐसा जब सुनेंगे तो मन में हो सकता है किसी के ऐसा आए कि ऐसा क्यों, बाकी सारे जो उपाय हैं उनको निम्न क्यों बताया जा रहा है, केवल श्रीमद् भागवतम महापुराण की इतनी महिमा क्यों बताई जा रही है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं, एतन निर्विद्यमानान, एतन यानी ये जो निर्विद्यमान का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसने समस्त भौतिक इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर दिया है, पूरी तरह से सारी भौतिक इच्छाओं से जो मुक्त हो जाता है उसे निर्विद्यमान कहते हैं। और उसके बाद इच्छितम, इच्छितम का मतलब होता है जो सारी भौतिक इच्छाओं, भोग की इच्छुक होता है वो, और दूसरा अकुतो भयम यानी समस्त संदेह तथा भय से मुक्त हो जाए, और योगिना मतलब आत्म संतुष्ट हो। तो जो भी स्थिति में चाहे कोई जीव हो, नृप हे राजन निर्णीतम, निर्णीतम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ये निर्णय करके बताया गया है शास्त्रों में, अब विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसके विषय में, अब माथा कुट्टी करने की जरूरत नहीं है। निर्णय दे दिया गया है शास्त्रों में कि चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, चाहे आप भोग चाहते हो, चाहे आप समस्त भोगों के इच्छुक हो या समस्त भोगों का पूरी तरह से परित्याग करके मुक्त हो गए हो भोगों की इच्छा से, या फिर आत्मा में संतुष्ट हो, या फिर भगवान के शुद्ध भक्त हो, चाहे किसी भी स्थिति में आप हो, निर्णीतम उसका क्या निर्णय है, उसको क्या कार्य करना है? हरे नामानुकीर्तनम, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। अनुकीर्तनम हरेर नामानु, साफ बताया भगवान के नाम का कीर्तन। अनुकीर्तन का मतलब होता है किसी के पीछे पीछे, यानी जैसा आचार्यों ने कहा, जैसा आचार्यों ने बताया है उसी का अनुगमन करते हुए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, ये यही करना, भगवान के नाम को जपना, कीर्तन करना, यही निर्णय है। इसके अतिरिक्त कलाओ नास्तैव ना, ये साफ बताया महाप्रभु ने, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, यानी केवल हरि का नाम ही बताया। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी और का नाम भी ऐड किया जा सकता है। जैसे कोई भी नाम जप करके हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, कोई भी नाम जप करके हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें केवल हरे नामानुकीर्तनम, हरि का नाम ही आपकी सहायता करेगा। कलाओ नास्तैव 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 गतिरन्यथा, नहीं है नहीं है नहीं है, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी गति नहीं है, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा आश्रय नहीं है। हरि नाम के अतिरिक्त जीव को और कोई भी कृष्ण प्राप्ति का साधन नहीं है। और ये भागवतम महापुराण क्यों, इसकी इतनी महिमा इसलिए क्योंकि ये नामात्मिक ग्रंथ है। इसका एक एक अक्षर श्रवण करने से नाम में प्रीति होती है। इसको सुनने मात्र से कृष्ण के प्रति प्रेम, जब तक कृष्ण के प्रति आपका प्रेम नहीं है तब तक आप नाम में कभी रुचि नहीं ले सकते। नाम आप उसी का प्रेम से लेते हो जिसके जिससे आप प्रेम करते हो। और ये भागवत महापुराण वह ग्रंथ है जिसके एक एक अक्षर को श्रवण करने से आपके हृदय में कृष्ण प्रेम, साफ साफ बताया कि यदि इस भागवत महापुराण को श्रवण करेंगे तो क्या, यस्य श्रद्धताम आशु, केवल श्रद्धा भी हो जाए ना तो आशु का मतलब है उसी समय उसी क्षण तनिक भी देर नहीं लगेगी, स्यान मुकुंद मति सती, आपकी मति जो है वो भगवान के चरणों में सती हो जाएगी। जब इस तरह भगवान के चरणों में हृदय एकाग्र हो जाता है, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी वैभव आकर्षित नहीं करता, संसार की संपूर्ण सुंदरता कृष्ण के चरणों के समक्ष तुच्छ लगने लगती है, तब ही हम वास्तव में कृष्ण नाम ले सकते हैं। वास्तविक लक्ष्य जो है वो कृष्ण नाम में प्रीति है, कृष्ण चरणों में प्रीति है, और वो केवल भागवत महापुराण को श्रवण करने से ही संभव है। इसलिए बताया यहाँ पर, वे कह रहे हैं कि चाहे आप किसी भी स्थिति के लोग जीव हो, अगर आप भोग प्राप्त करना चाहते हो, संसार के भोगों में आकर्षण है तो भी आपको क्या करना है, भगवान के नाम को जपना है, क्योंकि निश्चित रूप से प्रदान करता है। जो नाम है वो चिंतामणि है, जैसी आपके हृदय के अंदर भावना होगी ना तो ये चैतन्य है आपको प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि नाम जप करने से केवल भगवान के हृदय भगवान के प्रीति प्राप्त होती है। हर वो वस्तु जो आप इच्छा करते हो, हर वो साधन या सुविधा जो आप चाहते हो, ये नाम तो भगवान की तरह शक्तिशाली है। महाप्रभु कहते हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता, भगवान के नाम में भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति अर्पित कर दी है। हर वो कार्य जो भगवान के लिए
भगवान कर सकते हैं, भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उसी प्रकार नाम जप करने से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है और प्रत्येक कार्य संभव, चाहे संसार के भोग की वासना भरी हुई हो, चाहे आपको आपके हृदय में मुक्ति प्राप्त करने की वासना हो या फिर मुक्ति की भी इच्छा न हो, भगवत भक्ति की इच्छा हो, भोग करना है तो नाम जपना चाहिए, क्योंकि नाम जप करने से ही हमें भौतिक वस्तुएं प्राप्त होंगी। अगर मुक्ति चाहते हैं तो नाम जप करना चाहिए, क्योंकि नाम जप करने से जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त होगी। और यदि पहले से ही योगी नाम, भले ही पहले से ही मुक्त अवस्था में जो व्यक्ति होगा उसका भी आकर्षण भगवान के प्रति होगा और भगवान नाम को उसे जप करना, यही नाम जप करना ही वास्तव में गति है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना निर्णयतम, ये निर्णय दिया गया है शास्त्रों में, संपूर्ण शास्त्रों में ये बताया गया है, ये फाइनल आंसर है। यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी फाइनल आंसर दे रहे हैं कि जीव को हर समय, उन्होंने पूछा था क्या जप करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, तो भगवान हरे नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। और ये भगवान के नाम की आकर्षण, भगवान के नाम की प्रीति तभी उत्पन्न होगी हृदय में जब हम श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करेंगे। ये श्रवण और कीर्तन ये सदैव एक साथ चलना चाहिए। श्रवण बंद हो जाएगा तो फिर कीर्तन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए चाहे हम किसी भी स्टेज पर हो, कुछ भी हो जाए, तो हमें नाम जप अवश्य करना चाहिए, सदैव करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, नाम जप के प्रति अपनी रुचि को इंक्रीज करना चाहिए। पहले में भले ही हम इच्छाओं से, भोग इच्छाओं की तरफ आकर्षित होते हैं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही हम हर कार्य करते हैं, लेकिन जैसे 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 नाम जप करते जाएंगे तो हृदय के अंदर जो मलिनता है, भौतिक आसक्ति है, वो स्वतः मिट जाएगी। हृदय के अंदर मलिनता को या भौतिक गंदगी को निकालने के लिए और कुछ नहीं करना है। जपते जपते जैसे जैसे हम जपते जाएंगे वैसे वैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा और खुद ब खुद ये भौतिक आसक्ति आकर्षण समाप्त हो जाएगा। इसलिए साफ बताया निर्णीतम, ये निर्णय दिया गया है समस्त शास्त्रों में कि हरे नामानुकीर्तन, हमें भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र कहता है जपात सिद्धिम, जपात सिद्धिम, जपात सिद्धिम न संशय। जपात सिद्धि केवल जप के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होगी। यदि भौतिक राज्य चाहिए तो जप के द्वारा मिलेगा, भौतिक भोग चाहिए तो भी जप के द्वारा, आनंद चाहिए तो भी भक्ति के द्वारा, मुक्ति चाहिए तो भी भगवान नाम के द्वारा, केवल जप के द्वारा ही सिद्धि संभव है। जप भगवान का पवित्र नाम जो है वो भगवान की तरह पवित्र है और हृदय को इतना पवित्र कर देता है, चाहे हमारे हृदय में कितना ही भौतिक आकर्षण हो वो सब क्षय हो जाता है और वास्तविक सिद्धि प्राप्त होती है। वास्तव में भक्तों जीवन की सिद्धि क्या है कि हम बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से बचें, हम वास्तविक धाम, अपने वास्तविक लोक को प्राप्त करें, उसी के लिए हमें इस मनुष्य जीवन, यह मनुष्य जीवन मिला। और यदि हम अपने मनुष्य जीवन में अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को, हाईएस्ट अचीवमेंट को नहीं प्राप्त करते हैं तो फिर पुनः कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा हमें यह मनुष्य जन्म भी प्राप्त होगा। और इसके अंदर जो आज हमें इतनी सारी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं कि आगे जाके हमें प्राप्त होंगी या नहीं, तो इसीलिए हमें इस मनुष्य जीवन में वही वास्तविक सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो हर एक युग में भगवत प्राप्ति का या भगवान को प्रसन्न करने का एक अलग अलग विधि है। जैसे शास्त्र कहता है कृते अध्यायते विष्णु, सतयुग में भगवान का ध्यान किया जाता था। त्रेतायाम यज्ञ तो मखे, त्रेता युग में भगवान के लिए यज्ञ किया जाता था। और द्वापुरे परिचर्यायाम, द्वापुर में भगवान की अच्छा विग्रह की सेवा की जाती थी। और कलौ तत् हरि कीर्तना, कलयुग जो है वो भगवान के नाम कीर्तन का युग है। भगवान का पवित्र नाम, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो,
तो आपको निर्णीतम हरे नामानु कीर्तनम, ये निर्णय है कि आपको भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है, इसके अतिरिक्त तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो भगवान के करोड़ों नाम हैं, जिनमें कुछ नाम को गौण नाम कहा जाता है, कुछ नाम मुख्य नाम होते हैं और कुछ माधुर्य नाम होते हैं। गौण नाम वो होते हैं जिनको आप लेते हो परंतु भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, भगवान के दर्शन नहीं होते, यानी भगवान के निराकार स्वरूप के नाम, जैसे परमात्मा, जगदीश्वर, इस तरह के जो नाम होते हैं उससे भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। भगवत साक्षात्कार होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि भगवत साक्षात्कार नहीं है तो प्रेम किससे करेंगे, क्योंकि हमें जीव का जो वास्तविक तृष्णा है वो है प्रेम। प्रेम के लिए तो जीव जन्म जन्मांतर से भटक रहा है, तो यदि भगवान का कोई स्वरूप नहीं, कोई साक्षात्कार नहीं, तो प्रेम की संभावना नहीं है। तो दूसरा जो भगवान का मुख्य नाम होता है उसमें भगवान का साक्षात्कार होता है। जैसे भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का दर्शन होता है, जैसे यशोदा नंदन, नंदनंदन, गोपीनाथ, या फिर राधा वृंदावन चंद्र, राधा कुंज बिहारी, कोई ऐसे नाम जब हम लेते हैं तो भगवान का साक्षात्कार हो। और आगे जाके ये तो भगवान के नाम होते हैं ना, लेकिन जप करने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। जप हमेशा मंत्र का किया जाता है, नाम तो लिया जाता है लेकिन शास्त्र कहता है मंत्र जप करना होता है, जिससे मन को, मंत्र का क्या मतलब होता है, जिससे मन का त्रयाण हो, मन का कल्याण हो, ऐसा मंत्र। तो उसी मंत्र के द्वारा यहाँ पर जैसे बताया हरे नामानु कीर्तनम, तो कीर्तन किया जाता है भगवान के पवित्र मंत्र का। अभी बहुत सारे मंत्र हैं शास्त्रों में, वेदों में 100,000 मंत्र दिए गए हैं, जिनमें से 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। जैसे कैसे धनम देही, बरम देही, जो ये सब वस्तुएं जो चाहिए भौतिक जगत में, वो 80,000 मंत्र हैं। 16,000 ज्ञान मार्ग के मंत्र हैं, जैसे निराकारवादी वगैरह जप करते हैं, और 4,000 उपासना मार्ग के मंत्र हैं। तो इनमें से जो मंत्र हैं, कुछ ऋषियों ने बताए हैं, कुछ देवताओं ने, कुछ ब्राह्मणों ने, और अलग अलग उद्देश्य के लिए इन मंत्रों का जप किया जाता है। परंतु इन सब से भिन्न एक मंत्र है जिसे महामंत्र कहा जाता है। जैसे महा का शब्द जिसके साथ लग जाता है तो उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व करोड़ गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कोई दानी होता है, वो दानी हमें कितना दान दे सकता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, लेकिन कोई महादानी होता है ना, तो वो यदि किसी के ऊपर कृपा कर दे तो संसार में उसे और किसी और के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसी तरह कोई ज्ञानी होता है तो वो, उसको एक दो शास्त्रों का या एक दो फील्ड में ज्ञान होता है, लेकिन जिसको महाज्ञानी कहते हैं ना, उसको सारे शास्त्रों का ज्ञान होता है। कोई धनी होता है तो वो 10 करोड़, 20 करोड़ की पार्टी होता है, परंतु जो महाधनी होता है ना, वो संसार का सबसे ज्यादा रिच व्यक्ति होता है। तो उसी तरह बाकी सब मंत्र हैं, और मंत्र से हृदय पवित्र होता है, परंतु जिसकी बात हम करते हैं वो है महामंत्र। मंत्र में भी पावर होती है, परंतु महामंत्र मतलब जिसके अंदर असीम पावर हो, जिसके अंदर असीम शक्ति हो। क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं तो हमारे अपराध भी साधारण नहीं है, महा अपराधी हैं, तभी तो कलयुग में जन्म लिया है। तो उसके लिए कोई साधारण मंत्र काम नहीं आएगा। वैसे तो जितने भी दूसरे युग हैं उनमें भी भगवान का नाम जप किया जाता था, और हर युग के लिए एक अलग मंत्र होता है। हर युग में भगवान का एक अलग मंत्र जप किया जाता है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपनी किताब कृष्ण संहिता में अलग अलग युगों में जपने वाले अलग अलग मंत्रों के विषय में बताते हैं। वे बताते हैं कि सतयुग में जो मंत्र जप किया जाता था वो ऐसे है, नारायण परावेदा, नारायण पराक्षर, नारायण परामुक्ति, नारायण परागते।
ये सत्ययुग में जप करने वाला मंत्र था। उसके बाद त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम आए तब मंत्र बदला गया और उस त्रेता युग का कौन सा मंत्र है?
राम नारायण अनंता मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारी हरिर्वैकुंठ नामना।
उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और मंत्र चेंज होके द्वापर युग का कौन सा मंत्र है?
हरे मुरारी मधुकेटवारी गोपाल गोविंद मुकुंद शबरे योगेश नारायण कृष्ण विष्णु विराशयमा जगदीश रक्षम।
तो ये सब अलग अलग युगों के मंत्र थे और आज हम जिस युग में रहते हैं उसे कलयुग है, कलयुग कहा जाता है। और कलयुग के लिए शास्त्रों में जो मंत्र बताया गया है पद्म पुराण में, पद्म पुराण में साफ साफ बताया गया, मैं शास्त्र का प्रमाण देकर बता रही हूँ ताकि हमें कोई संशय ना रहे। पद्म पुराण में लिखा गया है
द्वात्रिशदक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम् प्रजपन वैष्णवी नित्यम् राधा कृष्ण स्थलम लभे।
द्वात्रिश सदक्षरम मंत्र, वह मंत्र जिसके अंदर द्वात्रिश द्वामना दो, त्रिशमना तीस, बत्तीस अक्षर हो, नाम षोडशर काम षोडश मतलब 16 जिसके अंदर 16 नाम है। अभी हमें सोचना है कि वो कौन सा मंत्र है जिसके अंदर 32 अक्षर हैं और 16 नाम हैं। अगर हम महामंत्र को का विश्लेषण करें तो उसके अंदर 8 बार हरे आता है, 4 बार कृष्ण आता है और 4 बार राम आता है। तो इस तरह से 16 नाम है और एक नाम को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो दो दो अक्षर होते हैं, हरे कृष्ण ना राम। तो इस तरह से 16 नाम और 32 अक्षरों वाला जो मंत्र है यानी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रजपन वैष्णव नित्यम। इस मंत्र को जो प्रजपन मतलब जो जप करता है सुष्ट रूप में, जप कैसे किया जाता है? हाथ में तुलसी माला लेकर तुलसी माला की झोली में 108 मनके वाली जो माला होती है उसके उस पर यदि हम सही रूप में एक एक मोती के ऊपर एक एक मंत्र को जप करते हैं तो उसको बोला जाता है प्रजपन वैष्णव नित्य। शब्द उच्चारण करना, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं भाई हम तो मन में नाम जप करते हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं है माला जोली उठाने की या तुलसी माला उठाने की। हम कोई अपने मन में क्या करता है वो तो उसके परमात्मा जानते हैं, परंतु शास्त्र में जो बताया गया है कि सुष्ट रूपेण शास्त्र में बताया गया कि नाम को जप करना चाहिए। यदि आप भगवान से प्रेम करते हो तो प्रेम का प्रदर्शन हमारी इंद्रियों के द्वारा होना चाहिए। यदि कोई माँ ये कहती है कि मैं अपने बच्चे से प्रेम करती हूँ लेकिन वो रात को जब भी जागता है तो मैं उसको उठाती नहीं हूँ गोद में, प्रेम करती हूँ हृदय से प्रेम करती हूँ, अरे तू प्रेम करती है तो उठा उसको दूध पिला तभी तो उसे शांति मिलेगी। उसी तरह यदि हम भगवान के पवित्र भगवान से प्रेम करने का दावा करते हैं तो भगवान के शब्दों को भी हमें स्वीकार करना चाहिए, भगवान के आदेशों को स्वीकार करना चाहिए और भगवान का आदेश है कि हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, यही शास्त्रों का आदेश है। तो प्रजपन वैष्णव नित्य, हमें इससे क्या प्राप्त होगा? राधा कृष्ण स्थलम लभेत, भगवान राधा कृष्ण जहाँ पर रहते हैं उस गोलोक धाम का धाम में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होगा। ये तो ही पद्म पुराण की बात। उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद के अंतिम संहिता में बताया गया है
षोडशीतानि नामानि द्वात्रिषट् वर्णकानि कलौयुगे महामंत्र सम्मतो हि जीवतारणि।
षोडशोतानि नामानि यानी जिसके अंदर 16 नाम हैं,
द्वात्रिश षड्वर्ण कानी और द्वात्रिश वर्ण है यानी द्वात्रिश अक्षर है। कलयुगे महामंत्र, इस कलयुग में आपको केवल महामंत्र का जप करना है। सम्मतो ही इसी से ही जीवों का कल्याण होगा। कलयुग में जपने के लिए कोई मंत्र है तो वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यजुर्वेद में कलिसंत्र उपनिषद में महामंत्र ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बताते हैं। वे कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम् नाम्नाम् कलिकल्मषनाशनम् नाथः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। हे नारद, मैंने सारे वेदों में सारे शास्त्रों में देख लिया है इस महामंत्र के अतिरिक्त कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए, कलयुग के जीवों को कष्ट को समाप्त करने के लिए नातः परतरोपाय, इसके अतिरिक्त और कोई भी मंत्र नहीं है और कोई भी उपाय नहीं है। इसी कलयुग के जीवों को केवल महामंत्र ही जप करना चाहिए। महामंत्र से ही हमारे संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, संपूर्ण कष्ट दूर होंगे और भगवत प्राप्ति होगी। और महामंत्र जब करना चाहिए हृदय से, जैसे हमें श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि नाम जप करने के साथ साथ नाम अपराध से बचना है, तो 10 नाम अपराधों से हमें बचकर भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए हृदय के अंदर यही होना चाहिए कि हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, इस भौतिक जगत के आवागमन के चक्कर को छूटकर कृष्ण के चरणों को प्राप्त करने के लिए इस नाम का आश्रय ले रहे हैं, तो इसी भाव से हमें गिड़गिड़ा कर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हृदय नहीं लगता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा मन भगवान के अंदर। कई लोग बोलते हैं नाम जप करते हैं परंतु नाम में मन नहीं लगता। आपका मन भले ही नहीं लगे लेकिन जिसका नाम होता है, जब उसको लिया जाता है तो जो नामी होता है वो अवश्य श्रवण करता है ना। नामी मतलब जिसका नाम है उसके मन को वह नाम अवश्य आकर्षित करता है। हमारे विषय में कहीं पर बात हो रही होती है, दूसरी कितनी भी बातें होंगी हम सुने या ना सुने, लेकिन हमारा नाम यदि कहीं पर हम सुनेंगे तो अवश्य हमारी कान जो है वो उस तरफ आकर्षित होंगे कि मेरे विषय में क्या बात हो रही है। उसी तरह जब हम भगवान का नाम पुकारते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो उसी समय भगवान हमारी ओर आकर्षित होते हैं कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, मुझे अवश्य उसकी सहायता करनी चाहिए, मुझे अवश्य उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, मुझे अवश्य उसे अपने पास अपने प्रेम को प्रदान करना चाहिए। तो जैसे ही हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, तो नाम जप करने की बस यही विधि है कि हम जब नाम जप करें तो पूरा मन नाम में नाम लगे, लेकिन फिर भी जो हम उच्चारण कर रहे हैं उसको पूरा श्रवण करें, है ना। सिर्फ हियरिंग, नो थिंकिंग, उस समय कुछ और सोचना नहीं है, सुनना है। नो टॉकिंग, किसी भी विषय में बात नहीं करती। कुछ लोगों की आदत होती है माला उठाते हैं तो 100 बातें याद आती है, फिर उससे बात करें नहीं। नो टॉकिंग, माला के टाइम पर किसी से बात नहीं करनी है, माला के टाइम पर किसी के साथ ना मोबाइल पे चैटिंग नहीं करनी। कुछ ऐसे करेंगे, एक हाथ में माला होगी दूसरे हाथ में मोबाइल, तो ऐसे नहीं करना है। और नो स्लीपिंग, माला के टाइम पर जागृत होना है, जाग के भगवान का नाम लेना है, और उस टाइम पर करना है तो केवल क्या, ओनली हियरिंग, सिर्फ श्रवण करना है। ये भगवान का पवित्र नाम जब कानों के रास्ते हृदय में जाता है तो हृदय की संपूर्ण मलिनता समाप्त हो जाती है। हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम जो है वो जिस तरह समुद्र में लहरें विलोरे मारती हैं, उसी तरह हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम का समुद्र जो है वो विलोरे मार रहा होता है। यदि हम प्रेम से भगवान का नाम जप करते हैं तो अवश्य जीवन की सिद्धि प्राप्त होगी। तो इसीलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे आप मुक्त व्यक्ति हो, भौतिक भोगों में कोई भोगों की कोई इच्छा नहीं है, भले ही भोगों की बहुत सारी भौतिक भोगों की आसक्ति है, यदि मुक्त अवस्था पे हो या भगवान के शुद्ध भक्त हो, आपको एक ही काम करना है, क्या? निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम, ये निर्णय किया गया है कि आपको यदि आनंद प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे